पृष्ठ संख्या एक, अध्याय एक, संगीत में घराना, महत्व, उद्भव, स्वरूप एवं विकास, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक की एक लंबी काल यात्रा में भारतीय संगीत कला ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो विविध राजघरानों और साम्राज्यों के उत्थान पतन का प्रभाव संगीत कला और उसके कलाकारों के जीवन पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कला से मानव मन की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है, अतः यह जीवन के लिए और जीवन के निकट होती है। कलाकार एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने समाज का प्रतिनिधि है, अतः जिस समाज में वह जीता है उसका प्रतिबिंब उसकी कला में अवश्य दिखाई देता है। यही कारण है कि संगीत के विकास क्रम में वैदिक काल की पवित्रता, रामायण महाभारत युग की सात्विकता, हिंदू राजाओं की स्थिरता, मुगलों की अयाशी और कला परस्ती, संतों की भक्ति परायणता, मराठों की कठोर जीवन साधना और कला भक्ति, राजे रजवाड़ों की रंगीनी, अंग्रेजों की उपेक्षा और स्वातंत्र्य युग के संघर्ष और चेतना का प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसीलिए इतिहास साक्षी है कि कलाकार ने युगों से जो कुछ पाया है अपनी कला में पीरों कर समाज को दिया है। संगीत के घरानों को युग ने पाला है और आज युग के परिवर्तन के साथ ही उसमें भी अनेक परिवर्तन होते दिखाई देने लगे हैं। घरानों का उद्भव। संगीत में घराने कब से प्रारंभ हुए इसका ठीक ठीक उत्तर देना कठिन है। आधुनिक युग में केवल घरानों पर प्रकाशित तो पुस्तकें उपलब्ध हैं, उन सभी पुस्तकों में घरानों की परंपरा करीब 250-300 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं बताई गई है। यूं देखा जाए तो मध्य युग में भी ध्रुपद की चार वाणियां प्रसिद्ध थीं, जिन्हें चार घराने कहा जा सकता है। ध्रुपद गायकी के प्रचार से पूर्व भी भरत मत, शिव मत, हनुमान मत और नारद मत जैसे चार मत प्रचलित थे, जो घराने के पर्याय ही माने जा सकते हैं। अतः घरानों का उद्भव पिछली 2-3 सदियों में ही हुआ है, ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। इसके पहले भी घराने तो थे ही, किंतु उनका स्वरूप भिन्न था। वे कभी वाणी तो कभी मत के नाम से संबोधित किए जाते थे। घरानों की नींव। प्राचीन काल से ही व्यक्ति पूजा मनुष्य का स्वभाव रहा है। वैदिक काल में ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा, रामायण महाभारत काल में रामकृष्ण के प्रति भक्ति भावना, राजाओं के समय में राजाओं के प्रति आदर सम्मान और मुस्लिम शासकों के युग में बादशाहों की कदम पोशी, ये सभी उसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पृष्ठ संख्या 2। ऐसे मानव स्वभाव ने जब किसी कलाकार विशेष में ऐसी अनूठी प्रतिभा देखी होगी जिस उसकी निर्माण शक्ति में किसी विशिष्ट प्रकार की सौंदर्य कल्पना की निजी दृष्टि और अभिनव सृष्टि का अनुभव किया होगा, तो जो दूसरों से अलग ठहरती हो, अलग दिखाई देती हो या अलग दिखाने की क्षमता रखती हो, तो स्वाभाविक रूप से ही वह उसका आदर्शकर्ता रहा होगा, उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम भावना व्यक्त करता रहा होगा, उसे बार बार सुनने के लिए उत्सुक रहा होगा, उसके कला नैपुण्य तथा बुद्धिक क्षमता पर मुग्ध होकर शिष्य रूप में उसका अनुकरण और रसिक रूप में उसका अभिनंदन करता रहा होगा और वहीं से कभी घराने की नींव पड़ गई होगी। श्री भगवत शरण शर्मा के अनुसार संगीत में घरानों की नींव 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजपूत काल में पड़ चुकी थी। अपनी बात का समर्थन करते हुए वे लिखते हैं, राजपूत काल में 8वीं से 12वीं शताब्दी संगीतकारों को राज दरबारों में आश्रय मिला करता था, अतः इस युग का संगीत अधिकतर राजाश्रय में ही उन्नति कर सका। इस काल के कलाकार अपने संगीत ज्ञान को इतना छिपा कर रखते थे कि वे किसी अन्य जाति वालों को तो क्या अपनी ही जाति वालों तक को बताने में संकोच करते थे। यह संकीर्णता यहाँ तक बढ़ी कि वे संगीत के ग्रंथ भी नहीं लिखते थे। उनका संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी चला करता था। यदि वे निसंतान होते तो उनका संगीत भी उन्हीं के साथ समाप्त हो जाता था। इस संकीर्ण मनोवृत्ति के फलस्वरूप संगीत के क्षेत्र में घरानों की नींव पड़ गई और इस परिपाटी ने संगीत के विकास को अवरुद्ध कर दिया। उसी पुस्तक में शर्मा जी आगे लिखते हैं, शासक वर्ग की उदासीनता के कारण यह कला अंग्रेज काल में निम्न श्रेणी के व्यवसायी लोगों में जा पहुंची। संगीतज्ञों में अशिक्षा, मूढ़ता, संकीर्णता और स्वार्थपरता प्रवेश कर गई। उनके सम्मुख व्यक्तिगत स्वार्थ ही सर्वोपरि रह गया। इस वैयक्तिक स्वार्थ के गर्भ से संगीत में घरानों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार ब्रिटिश काल में भारतीय संगीत में यदि कोई सबसे बुरी बात हमें मिलती है तो घरानों का निर्माण है। इनके इन दोनों विधानों से यही निष्कर्ष निकलता है कि राजपूत युग में अर्थात 12वीं शताब्दी के पूर्व घरानों के प्रारंभ की पृष्ठभूमि भले ही तैयार हुई हो, किंतु आधुनिक घरानों का पूर्णतः विकास तो अंग्रेजों के युग में ही हुआ है। कुछ विद्वान तबले के दिल्ली घराने को 500 वर्षों से अधिक प्राचीन बताते हैं। भारतीय संगीत कोश के प्रणेता पंडित विमला कांत राय चौधरी अपनी पुस्तक में दिल्ली घराने की वंश परंपरा बताते हुए सिद्धार्थ खां डाढ़ी के नाम के पास ईस्वी सन 1300 का काल लिखते हैं। पृष्ठ संख्या 3। तबला शास्त्र में श्री मधुकर गोडबोले ने लिखा है, तबले के इतिहास में अमीर खुसरू का काल सन 1300 के बाद का काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में खुसरू द्वारा सितार, हुसैन शर्की द्वारा ख्याल व सिद्धार्थ खां द्वारा तबला वादन का प्रारंभ हुआ। मृदंगाचार्य पंडित राम शंकर पागलदास ने अपनी व्यक्तिगत भेंट में उस्ताद सिद्धार्थ खां डाढ़ी को कुदौ सिंह के गुरु भवानी दीन, भवानी सिंह या भवानी दास की समकालीन बताया है। श्री बाबूलाल गोस्वामी अपने लेख कुदौ सिंह में लिखते हैं कि कुदौ सिंह के गुरु भवानी दीन ने दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले को 300,000 पढ़ने सुनाकर प्रसन्न किया था। आचार्य बृहस्पति ने भवानी दीन को मुहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कलाकार के रूप में उल्लेख किया है। यदि भवानी दीन और सिद्धार्थ खां समकालीन थे तो सिद्धार्थ खां का काल भी मुहम्मद शाह रंगीले का समय ही होना चाहिए, जो सन 1719 से 1749 ईस्वी का है। वैसे भी ध्रुपद गायकी की लोकप्रियता 18वीं शताब्दी के आरंभ तक तो बनी रही, ऐसा विविध इतिहासकारों का सर्वानुमत प्राप्त होता है। अतः तबले का विकास 18वीं शताब्दी के आरंभ के बाद ही हुआ होगा, यह निष्कर्ष अधिक तर्क संगत लगता है। दिल्ली घराने को सभी विद्वान तबले का प्रथम घराना मानते हैं। उसकी वंश परंपरा का निरीक्षण करने पर वह 300 साल से अधिक प्राचीन नहीं मालूम होता। अतः सन 1300 ईस्वी के बाद अर्थात 14वीं शताब्दी में दिल्ली घराने के प्रवर्तक उस्ताद सिद्धार्थ खां हुए होंगे, यह कल्पना योग्य प्रतीत नहीं होती। दूसरी मुख्य बात यह है कि किसी भी मध्यकालीन पुस्तक में तबला, उसके कलाकार या तबले के घरानों का उल्लेख नहीं मिलता। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति मुसलमान और भारतीय संगीत में लिखते हैं, मोहम्मद शाह रंगीले के युग तक हम सितार और तबले की चर्चा नहीं पाते। मोहम्मद शाह रंगीले की मृत्यु सन 1748 से 49 वर्ष पश्चात संग्रहित ग्रंथ नादिराती शाही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की कृति है, जिसकी प्रथम पांडुलिपि सन 1797 ईस्वी में शाह आलम ने स्वयं तैयार कराई थी। तबले की चर्चा उसमें भी नहीं है। पृष्ठ संख्या 4। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे अपने संगीत शास्त्र में लिखते हैं कि संगीत में घरानों का उल्लेख हकीम मोहम्मद करम इमाम की पुस्तक मौदन उल मूसिकी में मिलता है, जो सन 1857 के आसपास लिखी गई थी। श्री ललित किशोर सिंह ने ध्वनि और संगीत में लिखा है कि तानसेन के बेटे विलास खान ने से प्रसिद्ध रबाबियों का घराना चला और उनके छोटे बेटे सुरसेन से सितारियों का। यह सेनिया घराने के नाम से प्रसिद्ध है। संगीत में घराने कब से प्रारंभ हुए, इस प्रश्न का यदि हम उत्तर देना चाहें तो इन पुस्तकों के तथा व्यक्तिगत विश्लेषणात्मक तर्क वितर्कों के आधार पर यह कह सकते हैं कि भारतीय संगीत में घरानों की नींव भले ही यमन संस्कृति के सम्मिश्रण के बाद या उसके पूर्व ही पड़ चुकी हो, किंतु गायन वादन तथा नृत्य में हम जिन्हें घरानों के नाम से आज पहचानते हैं, उन घरानों का प्रारंभ मुगल युग के अंतिम समय में ही हुआ है। उसका स्पष्ट और मुख्य प्रमाण यही है कि हमें किसी भी प्राचीन या मध्यकालीन ग्रंथ में घराना शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आधुनिक युग में ख्याल गायन के क्षेत्र में जिन्हें ग्वालियर, आगरा, जयपुर या किराना घराने के नाम से, कुदऊ सिंह या नाना पानसे घराने के रूप में, पखावज के क्षेत्र में दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, अजराड़ा, फरुखाबाद या बनारस के नाम से, तबले में एवं लखनऊ तथा जयपुर कहकर कथक नृत्य में संबोधित करते हैं, वे सभी घराने मुगल युग के अंतिम काल में ही अस्तित्व में आए हैं, जो 300 साल से अधिक पुराने नहीं हो सकते। घराने के उद्भव के पूर्व और पश्चात सामाजिक दृष्टि से सांगीतिक परिस्थिति। भारत पर मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व अर्थात 12वीं सदी के पूर्व संपूर्ण देश में एक ही संगीत प्रणाली प्रचलित थी, जिसकी पुष्टि निम्न कथन से होती है। संगीत के विषय में औत्तरीय अथवा दक्षिणात्य जैसे भेदक शब्दों का प्रयोग संगीत रत्नाकर में कहीं नहीं है। अतः सिद्ध है कि न तो हिंदुस्तानी संगीत का जन्म सारंगदेव से पूर्व हुआ और न संगीत रत्नाकर में उत्तर और दक्षिण के संगीत का समन्वय है। मुसलमानों के आक्रमण और शासन के पश्चात शुद्ध रूप से हिंदू कहलाने वाली सभी भारतीय कलाओं पर यवन संस्कृति का प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया। स्वाभाविक है कि विभिन्न जातियों का आपसी संपर्क परस्पर प्रभावित करता है तथा दूसरे को अपने गुण, संस्कार एवं कला से आकर्षित करता है। फिर वह तो शासक वर्ग था, अतः उनका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से देखने को मिलना स्वाभाविक ही है। पृष्ठ संख्या 5। 8वीं शती से हिंदुस्तान पर मुसलमानों का अरब आक्रमण प्रारंभ हो गया था। 13वीं शती के प्रारंभिक काल में भारत पर मोहम्मद गोरी ने प्रथम मुस्लिम शासक स्थापित किया। इस बीच भारत में सूफी संतों का आगमन हो चुका था। सूफी संतों ने उनकी विचारधाराओं ने तथा चिश्ती परंपरा ने भारत के दीनहीन दलित और उपेक्षित हिंदू समाज पर अपना गहरा प्रभाव रख छोड़ा था। सूफी लोग संगीत में महान प्रेमी थे, अतः भारतीय संगीत पर ईरानी संगीत का प्रभाव 13वीं शती के आरंभ से ही दृढ़ रूप से फैलता चला गया। मुस्लिम शासक के प्रारंभ के साथ ही संगीत की बागडोर मुसलमान कलाकारों के हाथ में चली गई। आचार्य बृहस्पति लिखते हैं कि मुसलमान शासकों के दरबार में भी परिस्थिति ऐसी न थी कि विशुद्ध भारतीय भावनाएं तथा भारतीय कला उभर सके। मुस्लिम शासकों ने मुख्यतः अपने ही सहधर्मियों को दरबार में संगीतज्ञों के पद पर नियुक्त किया था। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों पर मनमाने अत्याचार किए। यह इन ग्रंथों को समझने में वे अधिकतर असफल ही रहे। अकबर जैसे उदार सम्राट के दरबार में भी अधिकांश संगीतज्ञ मुसलमान ही थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि कुछ हिंदू कलाकारों ने तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के हेतु धर्म परिवर्तन कर लिया हो। इस संदर्भ में बामनराव देशपांडे लिखते हैं, यद्यपि यवन संस्कृति के श्रृंगारिक प्रवाह से हमारी भारतीय संगीत की मूल रूप में बहुत अंतर पड़ गया, यद्यपि कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि ऐसा होने से उसमें माधुर्य और आकर्षण का सामर्थ्य बढ़ गया था। इसके समर्थन में प्रसिद्ध विद्वान वंडारे पृष्ठ संख्या 6 प्रमदा के उद्गार पढ़ने योग्य हैं। द न्यू आउटलुक ऑफ इंडियन कल्चर के पृष्ठ 20 पर संग्रहित श्री वंडारे प्रमदा के विचार प्रस्तुत करते हुए श्री उमेश जोशी भारतीय संगीत का इतिहास में लिखते हैं, यह हमें मानना पड़ेगा कि मुगल युग में मुस्लिम संस्कृति से मिलकर भारतीय संगीत का सौंदर्य समृद्धिशाली होकर उसमें एक ऐसी मंत्र मुग्धता आ गई कि जिससे उसमें आकर्षण शक्ति की अभिवृद्धि हो गई। दक्षिण भारत का संगीत इस अपूर्व लावण्य से वंचित रहा। इस कथन की पुष्टि करते हुए श्री भगवत शरण शर्मा लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में सन 1296 ईस्वी से सन 1320 ईस्वी यवन संस्कृति के सम्मिश्रण के कारण भारतीय संगीत में परिवर्तन होना आरंभ हो गया था, जो अकबर युग तक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। अकबर के दरबार के संगीतज्ञ भारतीय ध्रुपद शैली की रक्षा करते थे, साथ में रागों में ईरानी संगीत का मिश्रण भी उनकी गायकी में दिखाई देता था, जिससे संगीत का सौंदर्य द्विगुणित हो गया, ऐसी मान्यता है। उस युग के संगीत में श्रृंगार प्रियता और विलासिता की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। संगीत में सात्विकता एवं भक्ति के स्थान पर मनोरंजन अर्थोपार्जन की भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी तथा संगीत आम जनता के से विमुख होकर राज दरबारों की शोभा मात्र बनने लगा था। मुगल युग में कुछ व्यवसायी कलाकारों के ऐसे समुदाय अस्तित्व में आए जिन्होंने अपने कलात्मक प्रस्तुतिकरण में कुछ अपनापन तथा कल्पना सौंदर्य की कुछ विशिष्ट शैली का प्रयोग करना प्रारंभ किया। प्रत्येक समुदाय के प्रमुख कलाकार के प्रस्तुतिकरण में अपना निजी योगदान होता था। इस तरह घराने तथा घरानेदार कलाकार अस्तित्व में आए। अकबर युग में जिस तरह ध्रुपद की चार वाणियां प्रसिद्ध थीं, उसी तरह इन्हीं व्यवसायी कलाकारों के कारण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के पश्चात तबला, पखावज तथा ख्याल गायकी के घरानों की नींव पड़ने लगी, जो मुगल युग के बाद अधिक समृद्ध एवं विस्तृत हुई। इस तरह पिछले 300 वर्षों में अर्थात 18वीं शताब्दी के बाद आधुनिक घराने प्रचार में आए। मुगल युग के अंतिम चरण में मुगल साम्राज्य अत्यंत दुर्बल हो गया था, किंतु ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अंतिम मुगल बादशाहों ने अपनी शानो शौकत और संगीत प्रियता को बनाए रखा था। अतः घरानेदार कलाकारों को बराबर राजाश्रय मिलता रहा। उस समय की तात्कालिक सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव संगीत पर भी देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप ध्रुपद धमार के स्थान पर ख्याल एवं ठुमरी ने स्थान ले लिया। पृष्ठ संख्या 7। उन कलाकारों के समुदाय में कुछ लोग ऐसी रूढ़वादी थे जिन्होंने अपनी कला को अपरिवर्तित रखा, किंतु कुछ लोग अपने पर संयम नहीं रख सके और वे उसी प्रवाह में बह गए। किंतु मुगल और मराठा साम्राज्यों के पतन के पश्चात अंग्रेजों ने भारत पर अपना आधिपत्य जमाया। हम गुलाम हुए। यहाँ जीवन सिसक रहा हो, वहाँ कला कैसे मुखरित हो सकती थी। अतः संगीत कला जनसाधारण से दूर नायिकाओं के मुजरे तक सीमित हो गई। ऐसी स्त्रियों की संतानें अधिकतर संगीत का व्यवसाय ही करती थीं। अतः समाज में जो संगीतकार पैदा हुआ, कला की दृष्टि से वे चाहे उच्च कोटि के ही क्यों न हों, समाज में अपना स्थान और मान नहीं प्राप्त कर सके। इसके कई कारण थे, जिसमें मुख्य कारण यह था कि वे उच्च कोटि के कलाकार होते हुए भी अन्य दृष्टि से कुछ विभिन्न संस्कार वाले तथा अशिक्षित थे। इसमें से बहुतों में संकीर्णता और स्वार्थ परता व्याप्त कर गई थी। कुछ लोग तो ऐसा मानने लगे थे कि कला को जितना छिपा कर रखा जाएगा उतना ही उनका सम्मान बढ़ेगा। फलतः मुगल सल्तनत के अस्तांचल से पूर्व ही हमारा संगीत सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा खो बैठा था। म्यूजिक ऑफ सदर्न इंडिया में श्री कैप्टन डे ने इस विचार पर अपना विचार व्यक्त किया है, जिसे भारतीय संगीत के इतिहास में श्री उमेश जोशी ने इस प्रकार लिखा है। इस युग में संगीत इतना पतनोन्मुख हो गया था कि यह तो सचमुच आश्चर्यजनक है कि इसका अस्तित्व आज तक बना रहा।